एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
मन तुझ में मगन, विश्वास तुझ पर जब गम, आनंद जो मिलता है प्रभु तेरा बेबया है, प्रभु बेबया। मेरा मन तुझ में मगन, विश्वास तुझ पर जब गम, आनंद जो मिलता है प्रभु तेरा बेबया है, प्रभु बेबया। हानि कुछ भी चाहे न कभी, ऐसा यीशु है मेरी भलाई। अपने जैसा ढाल मुझे, वो तोड़े फिर बनाए अपने जैसा ढाल मुझे। मेरा मन तुझ में मगन, विश्वास तुझ पर जब गम, आनंद जो मिलता है प्रभु तेरे नाम, बेबया है प्रभु बेबया।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। मैं मेरे श्रोताओं के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके संग हो, उन्हें तेरे वचनों को समझने और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा दे, तेरा सामर्थ्य दे, ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है सृष्टिकर्ता और उपचारक। आइए हम आज का संवाद सुनने, उससे पहले हम यह वचन पढ़े। इस वचन से हम आज का संवाद शुरू करते हैं जो मिलता है लूका रचित सुसमाचार 6:19 पद में। यहाँ हम पढ़ते हैं, और सारी भीड़ उसे छूना चाहती थी क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। प्यारो, जिसके पास सृजन करने की शक्ति है उसके पास पुनः सृजन करने और इस प्रकार उपचार करने की शक्ति और इच्छा भी है। परमेश्वर के सच्चे चरित्र को प्रकट करना और पीढ़ियों से उनके बारे में विकसित हुए भ्रांतियों को दूर करना यीशु का उद्देश्य था जब वह इस पृथ्वी पर आया। परमेश्वर के बारे में लोगों का दृष्टिकोण इतना विकृत हो गया था कि उन्हें मुख्यतः पाप का दंड देने वाले परमेश्वर के रूप में देखा जाने लगा। यीशु चाहते थे कि मानवता यह समझे कि परमेश्वर प्रेममय, करुणामय और अपनी सृष्टि, अपने बच्चों के प्रति असीम रूप से चिंतित भी हैं। मसीह का कार्य उस रिश्ते को फिर से जोड़ना था जो अदन में तब टूट गया था जब आदम और हवा ने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के निर्देशों से ऊपर रखकर पाप किया था। मसीह की सेवकाई का चंगाई पहलू इस पुनर्स्थापना के सबसे प्रभावी साधनों में से एक था। मसीह द्वारा बीमारों को दी गई शारीरिक चंगाई ने उनके प्रति उनके प्रेम और उन्हें पाप की शक्ति से बचाने की उनकी शक्ति को प्रदर्शित किया। तब भी और आज भी अक्सर हृदय तक पहुंचने का एकमात्र तरीका शारीरिक चंगाई ही थी। यह विचार करना विनम्रतापूर्ण है कि जिस परमेश्वर ने संपूर्ण ब्राह्मण की रचना की और अविश्वसनीय रूप से जटिल जीवों को अस्तित्व में लाया, वह हमें भी इसलिए बनाना चाहता था ताकि वह हमारी संगति का आनंद ले सके। हम ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति को समझ ही नहीं पा रहे हैं। सबसे उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन तो बस सतही तौर पर ही खरोंचते हैं। हम खुद को भाग्यशाली मानते हैं जब हम ब्राह्मण के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने वाली नई दूरबीनें बनाते हैं, लेकिन हम यह ठीक से नहीं समझा पाते कि यह वहाँ कैसे पहुँचा और इसे संतुलन में कैसे रखता है। चिकित्सा के अध्ययन से शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में कुछ समझ तो मिली है, लेकिन हम पूरी तरह से यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवन की चिंगारी कहाँ से आती है या घाव कैसे भरता है। ईश्वर यह सब समझता है। उसने मानव जीवन की रचना की और उसे बोलकर अस्तित्व में लाया। अपनी सारी सृष्टि में वह हमें सबसे खास मानता है। परमेश्वर ने सृष्टि को बोल करके अस्तित्व में लाया, पर मनुष्य को अपने प्रेम दिखाकर अपने हाथों से रचा, अपने स्वरूप में बनाया है। ईश्वर यह सब समझता है। मनुष्य के जीवन की रचना को वह अच्छी तरह से समझता है क्योंकि उसने ही इसे बनाया है। परमेश्वर ने धरती, पौधों और जानवरों को बोलकर अस्तित्व में लाया, लेकिन वह नीचे झुका और अपने हाथों से मिट्टी को मनुष्य का रूप दिया और फिर उसमें प्राण फूके। अपने व्यक्तिगत स्पर्श के अलावा परमेश्वर ने हमें रूप और चरित्र दोनों में अपनी छवि में बनाने का चुनाव किया। उसने हमारे प्रथम माता पिता आदम और हवा को तर्क करने और प्रेम करने की क्षमता दी। ईश्वर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बना सकते थे, फिर भी उन्होंने हमें रचा और हमें अपने जैसा बनाया। उन्होंने हमें सोचने, तर्क करने और चुनाव करने की क्षमता दी। उन्होंने हमें सामाजिक प्राणी के रूप में रचा है जिसमें संगति और प्रेम की चाहत है। उन्होंने अपने कुछ गुण हमारे साथ साझा किए हैं। इस प्रेम को समझने का एक तरीका यह है कि हम अपने बच्चे पैदा करके ईश्वर की रचनात्मक गतिविधि में शामिल हों। जैसे जैसे हम अपने परिवारों के साथ बातचीत और प्रेम का आनंद लेते हैं, हम यह समझना शुरू कर सकते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या बनाया और वह क्यों चाहते हैं कि हम अनंत काल तक उनके साथ रहें। आदम और हवा, हमारे प्रथम माता पिता ने पाप करने के बाद परमेश्वर से छिपने की प्रयास की, लेकिन परमेश्वर उन्हें ढूंढने निकला। वे लोग जान रहे थे कि वे लोग परमेश्वर का आज्ञा तोड़े हैं, इसीलिए वे परमेश्वर से छिप रहे थे। परमेश्वर का धार्मिकता उनसे चले गया था। अपने पाप को पहचान कर मानव जाति के माता पिता आदम और हवा भयभीत हो गए और परमेश्वर से छिप गए। उनकी बेफिक्री की खुशी की जगह अपराध बोध और अशुभता ने ले ली और पाप के माध्यम से वे बदल गए। शुक्र है कि प्रेममय सृष्टिकर्ता नहीं बदला। उसने उनसे कम प्रेम नहीं किया। उसने उनकी भलाई की परवाह करना नहीं छोड़ा। हालांकि वह उनके कार्यों से बहुत दुखी था, फिर भी उसने उन्हें अपने प्रेम का सांत्वना और आश्वासन दिया। उसने उन्हें आशा दी क्योंकि उसने एक योजना प्रकट की जिससे उनका रिश्ता फिर से स्थापित हो सकता था। इसे हम उत्पत्ति 3:15 में पाते हैं। यह उद्धार का पहला प्रतिज्ञा बाइबल में हमें मिलती है। उद्धार की योजना पृथ्वी की रचना से पहले ही बना दी गई थी, क्योंकि मसीह जगत की उपस्थिति के समय से घात किया हुआ मेमना है। यह हम पढ़ पाते हैं प्रकाशित वाक्य 13:18 पद में। फिर भी दोषी जाति के लिए अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए यहाँ तक कि ब्राह्मण के राजा के साथ भी एक संघर्ष था। हम पढ़ते हैं वन एलन वाइट की पुस्तक पेट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स पृष्ठ 63 में, परमेश्वर ने सर्वोच्च बलिदान हमारे लिए किया क्योंकि वह हमसे अति प्रेम करता था और अति प्रेम करता है। यह हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओ मुक्ति का रहस्य, परमेश्वर का उस संसार के प्रति, इस संसार के प्रति जिसने जिसने उससे प्रेम नहीं किया है, उस प्रेम की गहराई और कौन जान सकता है। जो भी कि हम इस पृथ्वी के लोग परमेश्वर से भटक गए थे और उससे प्रेम नहीं कर रहे थे, परमेश्वर का प्रेम इतना अनंत है कि वह हमारे लिए आया, हमारे लिए जान देने के लिए आया कि फिर से वह हमें अपने रिश्ता में लौटा सके। यदि परमेश्वर आदम और हवा के पाप से दुखी हुआ तो कल्पना कीजिए कि जब हम उसके उद्धार के निमंत्रण को स्वीकार करने में असफल होते हैं तो उसे कितना दुख होता होगा। अपनी इच्छाओं और प्राथमिकताओं को परमेश्वर के निर्देशों से आगे रखकर आदम और हवा ने परमेश्वर के साथ अपना वह आदर्श रिश्ता तोड़ दिया जो पहले था। वे पापी बन गए। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि जब परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है तो उसके और भी गंभीर परिणाम होते हैं। परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते का क्या हुआ? वे धर्मी परमेश्वर से डर गए और उससे छिप रहे थे, और एक दूसरे से भी वह ठीक से नहीं मिल सकते थे और शर्म कर रहे थे और एक दूसरे को दोष दे रहे थे। जीवन में बहुत सारी बदलाव आई, जिसे हम उत्पत्ति 3:16-19 में पढ़ते हैं। जब उन्होंने मुरझाए हुए फूल और गिरते हुए पत्तों में क्षय की प्रथम लक्षण देखे तो आदम और उसके साथी ने, हवा ने, उससे भी अधिक गहरा शोक मनाया जितना कि आज के लोग अपने मृतकों के लिए शोक मनाते हैं। मनुष्य के पतन ने पूरे स्वर्ग को दुख से भर दिया। अपनी महान दया के कारण परमेश्वर ने आदम के लिए कोई कठोर परीक्षा नहीं रखी और निषेध का हल्कापन और पाप अत्यंत गंभीर था। यदि आदम छोटी छोटी परीक्षाओं भी नहीं झेल सकता था तो यदि उसे बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाती तो वह बड़ी परीक्षा भी नहीं झेल पाता। सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि से जुड़ता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:14 में कि और वह देहधारी हुआ, वह वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना 1:14। परमेश्वर के लिए मनुष्य जाति को अपनाना क्यों जरूरी था? आप क्या सोचते हैं? इब्रानियों 2:17-18 कहता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वासयोग महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। क्योंकि यीशु हमारे साथ रहने आए, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षाओं से परिचित हैं और हमारे दुखों में सहानुभूति रखते हैं। आदम का हर पुत्र और पुत्री यह समझ सके कि हमारा सृष्टिकर्ता पापियों का मित्र है, क्योंकि अनुग्रह के हर सिद्धांत में, आनंद की हर प्रतिज्ञा में, प्रेम के हर कार्य में, उद्धारकर्ता के पृथ्वी पर जीवन में प्रस्तुत हर दिव्य आकर्षण में हम परमेश्वर को अपने साथ देखते हैं। यह जानकर हमें कितनी राहत मिलती है कि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिसने न केवल हमें बताया कि कैसे जीना है, बल्कि वह हम में से एक बन गया और हमें दिखाया कि कैसा जीना है। मसीह ने हमारे हर प्रलोभन और संघर्ष का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया। इसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 4:14-16 में, और युगों युगों की चाह पुस्तक में बहन एलन वाइट लिखती है पृष्ठ 25 में कि अपने जीवन और अपनी मृत्यु के द्वारा मसीह ने पाप द्वारा किए गए विनाश से उभरने से भी कहीं अधिक प्राप्त किया है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मानव परिवार का एक सदस्य बनने के लिए दे दिया ताकि वह हमेशा के लिए अपना मानव स्वभाव बनाए रखे। प्यारो, मसीह शरीर और आत्मा दोनों को पुनर्स्थापित करता है, यह हम पाते हैं मरकुस 2 अध्याय में। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य की आवश्यकताओं के अथक सेवक के रूप में आए। उन्होंने हमारी दुर्बलताओं को लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया ताकि वे मानवता की हर जरूरत को पूरा कर सके। हम पढ़ते हैं मत्ती 8:17 में, वे बीमारी दुख और पाप का बोझ हटाने आए थे। मनुष्यों को पुनस्थापना प्रदान करना उसका मिशन था। मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग किताब का प्रेस 17 में हम यह पाते हैं। मसीह की सेवकाई में चंगाई और शिक्षा दोनों शामिल थे, मरकुस 2:1-12। उद्धारकर्ता का कार्य किसी समय या स्थान तक सीमित नहीं था, उसकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी। गलील की हरी भरी पहाड़ी तलानों पर, यात्रा के मुख्य मार्गों पर, समुद्र के किनारे, सभाओं में और हर उस जगह जहां बीमारों को उसके पास लाया जा सकता था, उसका अस्पताल मौजूद था। हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में जहां से वह गुजरता, उसने पीड़ितों पर हाथ रखा और उन्हें चंगा किया। यह हम पाते हैं किताब मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग पृष्ठ 17 में। प्यारो, केवल मसीह का तरीका ही लोगों तक पहुंचने में सच्ची सफलता देता है। उद्धारकर्ता लोगों के साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे वह उनका भला चाहता हो। उसने उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई, उनकी जरूरतों को पूरा किया और उनका विश्वास जीता। फिर उसने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। प्यारो, व्यक्तिगत प्रयास से लोगों के निकट आने की आवश्यकता है। गरीबों को राहत पहुंचानी है, बीमारों की देखभाल करनी है, हमें रोने वालों के साथ रोना है और आनंदित लोगों के साथ आनंदित होना है। प्रार्थना की शक्ति, ईश्वर के प्रेम की शक्ति के साथ यह कार्य फल के बिना नहीं रहेगा, हो ही नहीं सकता, यह फल जरूर लाएगा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह चिकित्सा मिशनरी कार्य में उसका उद्देश्य था पाप से पीड़ित पुरुषों और महिलाओं को छुड़ाना, ना केवल शारीरिक पर आत्मिक चंगाई उन्हें देना था। हमें लोगों को उस चंगाई करने वाला उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर दिखाना है कि वह हमें चंगा कर सकता है। जैसे उन्होंने हमें चंगा किया, वह आपको भी चंगा कर सकता है। कलवरी के उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर संसार के लोगों की दृष्टि हमें कराना है। प्यारो, जब हम परमेश्वर की चंगाई को अनुभव करते हैं, उसका उद्धार को हम प्राप्त करते हैं, हमें इस बात को, इस संदेश को दूसरों को भी देना है, दूसरों को भी बतलाना है। हमारे सृष्टिकर्ता ने एक परिपूर्ण संसार तैयार किया है जिसमें उन्होंने शारीरिक और आत्मिक रूप से परिपूर्ण मनुष्यों को रखा है। इन प्राणियों के पाप में पतन के बाद मनुष्य शारीरिक और आध्यात्मिक अपूर्णता और रोग से पीड़ित रह रहे हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ही परमेश्वर की छवि को मानव जाति में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। आइए हम परमेश्वर के इस उपाय को ग्रहण करें, उसकी योजना को स्वीकार करें। परमेश्वर हमें चंगा करना चाहता है, वह हमें अपने रिश्ता में फिर से लाना चाहता है, आत्मिक आशीष देना चाहता है कि हम परमेश्वर के संगति में रहे और उसके साथ अनंत काल बिताए। आइए हम इसे ग्रहण करें और इस शुभ संदेश को दूसरों को भी बतलाए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे पास आते हैं पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा सृष्टि करता है, हमारा ख्याल करता है, तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम जब पाप में गिर गए थे, तू हमें बचाने के लिए आया कि हम फिर से तेरे रिश्ता में आ सके, पवित्र रिश्ता में आ सके और शारीरिक और आत्मिक पुनर्स्थापना हम पा सके। हमें यह चंगाई दे, पवित्र आत्मा का वरदान दे और इस संदेश को हमें दूसरों को दे।
जब यीशु को मैंने अपना लिया तो क्यों न यीशु के पीछे जाऊं, ओ क्यों न यीशु के पीछे जाऊं। जब यीशु को मैंने अपना लिया तो क्यों न यीशु के पीछे जाऊं।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े,
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।